يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. جب نگاہ محبت کی ہوتی ہے تو ہر چیز اچھی لگتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چشمہ اگر صاف ہوگا, شفاف ہوگا, تو جس چیز کو بھی دیکھے گا وہ صاف و شفاف نظر آئے گی. چشمہ اگر کالا, ہرا, نیلا, پیلا لگا لیا تو پھر ہر چیز ویسے نظر آئے گی.
بے شک.
اب چشمے پہ اگر کوئی خراش لگی ہوئی ہے تو جو چیز دیکھے گا اس میں خراش ہی نظر آئے گی. کسی نے کہا نا, وہ آپ چاند دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ چاند تو مجھے سامنے ہے, اور کسی کو چاند نظر ہی نہیں آ رہا. وہ وزیر تھے, دیکھو چاند ہے سامنے. تو ایک نوجوان سمجھدار تھے, انہوں نے کہا سر چشمہ دکھائیے گا اپنا. چشمہ دیکھا اس کا, چشمے پہ ایک خراش سی لگی ہوئی تھی جو دیکھنے میں چاند معلوم ہوتا. میں نے کہا یہ چاند جو ہے یہ وہاں نہیں ہے, کیونکہ آپ کے چشمے میں ہے. یہ تو لطیفہ تھا. اصل بات یہ ہے کہ جیسا چشمہ تو ویسی عکاسی, جیسی نظر ویسی جو ہے چیز کی رونمائی. ہمارے بزرگوں نے واقعات بیان فرمائے ہیں اور وہ واقعات تو ذرا ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن اس سے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ اصل چیز ہوتی ہے. لیلا مجنو کا واقعہ لکھا ہے کہ جو رئیس تھا علاقے کا, جس علاقے میں یہ لیلا اور جس علاقے میں مجنو رہا کرتے تھے, تو اس رئیس تک یہ بات پہنچی کہ بھائی ایک آدمی ایک عورت کے محبت میں اتنا گرفتار ہو گیا ہے اور اتنا زیادہ وہ ہے اس کا دیوانہ. اس نے کہا ذرا ہم بھی دیکھیں وہ کون عورت ہے. تو اس کو لیلا کو بلایا گیا تو اس نے دیکھا تو وہ تو ایسے ہی سانولی چلونی سی تھی, کوئی خاص ویسی چیز نظر نہیں آئی. اس نے ایسے ہی کہا کہ ارے یہ تیرے اوپر اتنا بڑا عاشق ہو گیا, وہ تیرا دیوانہ ہو گیا, تیرے اندر تو مجھے کوئی چیز نہیں رہتی. تو لیلا نے کہا کہ مجھے اگر دیکھنا ہے تو مجنو کی نظر سے دیکھو, مجنو کی نظر پیدا کرو مجھے دیکھنے کی. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ نظر اگر محبت کی ہو پھر محبت ہی محبت ہوتی ہے. دین پہ اگر محبت کی نگاہ ہوگی تو دین میں وہ حسن نظر آئے گا, دین کی باتیں اتنی اچھی معلوم ہوں گی کہ اس کے مقابلے میں اور کسی چیز کو اختیار نہیں کرے گا, نہ اس طرف نگاہ جائے گی, بشرطے کہ محبت کی نگاہ پیدا ہوگی. اور اکابر نے تو فرمایا کہ جن کی نگاہ وسیع ہے, جو قرآن و حدیث کے یعنی شراح ماہرین اور اس پر کام کرنے والے جن کی زندگیاں گزر گئیں, وہ تو کہتے ہیں ہم جس طرف نگاہ ڈالتے ہیں, دین کے جس شعبے میں نگاہ ڈالتے ہیں, اس میں تو حسین و عجیب حسن و جمال نظر آتا ہے. ہر ہر چیز میں ایسی ایسی حکمت نظر آتی ہے کہ بیان سے باہر. اور ہم احساس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا دین عطا فرمایا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ایسی ایسی حکمتیں نظر آتی ہیں کہ اشج کر اٹھتے ہیں کہ غیروں کے تو یہ اشر اشیر بھی نہیں ہے غیروں کے پاس. आज अफसोस की बात यही है कि हमारी निगाह जो है वो मोहब्बत की निगाह नहीं रही, इसलिए अपना जो हीरा है वो कुछ और ही नजर आ रहा है और बाहर का मिट्टी उस पर रीझ रहे हैं, उस पर जो है जाने भी दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह हमारी नज़रों को खोल दे, दुआ मिल के बैठ इधर आज जगह। अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का मदार जो है वो आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है जी। जिस अमल पे आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की छाप होगी वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल है। बशरूत दीगर कुछ हासिल नहीं, जो भी अमाल हम कर रहे हैं बज़ाहिर वो दुनिया के अमाल हों लेकिन अगर वो दीन की नीयत से किया जा रहा है और आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से किया जा रहा है तो वो भी अल्लाह के कबूल है और उस पर भी अजर सवाब और मरातिब क़ुर्ब मिल रहे हैं। किसी मरीज की को देखना लोग मिलते हैं, दुनिया में तरीका है कि दो अपने दोस्त अहबाब बीमार पड़ गए तो उनके पास जाते हैं, रिश्तेदार बीमार पड़ गए उनके पास जाते हैं, ये तो मिलना तो होता ही है ना भाई, एक दुनिया में एक तरीका है। लेकिन हमारे दीन में इस पर खास फजीलत बयान फरमाई गई, अजर सवाब बतलाया गया, मरीज का हक बतलाया गया और इस पर अजर सवाब रखा गया। देखिए एक आम चीज़ है लेकिन यहाँ तरगीब दी गई है कि मरीज की आदत करो, आज सल्लम मरीज की आदत फरमाया करते थे, जाया करते थे, राजकुर्सी फरमाते थे, हाथ से हाथ रखा करते थे, पेशानी पे हाथ रखा करते थे और उसको उम्मीद दिलाया करते थे कि मायूस नहीं हो, लावास तहूर इंशाअल्लाह, फिक्र नहीं करो, गम्मत करो, ठीक हो जाओ। अल्लाह ताला को आज़र सल्लम का तरीका पसंद, इस पर फजीलत आ गई। ज़ाहिर एक आम तरीका आम सी चीज़ मालूम हो रही है लेकिन आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि किया इसलिए इसकी जरूरत बढ़ गई। तो ये तो मामलात हैं, इबादात में आ जाइए, इबादात जिस पर मरातिब क़ुर्ब है वो आज़र सल्लम के तरीके के मुताबिक है तो मरातिब क़ुर्ब उस पर अजर सवाब भी है और क़ुर्ब भी मिल रहा है और खुदा ना खास्ता अमल कर रहे हैं लेकिन उसमें सुन्नत का जो है वो कमी है तो बस वो कहना चाहिए कि फर्ज सर से उतर गया। आज हम देखते हैं कि हमारी मसाजिद में बहुत सारे हजरात हैं, नौजवान हैं, नमाज का तो एहतमाम है माशाल्लाह लेकिन लिबास वो अजीब व गरीब है। एक जो है उसका ऐब नज़र से ओझल होता जा रहा और एक अक्सर यानी अक्सरियत कसीर तादाद, अक्सरियत तो नहीं कहेंगे कसीर तादाद ऐसी है जो ऐसे लिबास में मस्जिद आती है कि जो किसी भी तरह से जेब नहीं देती और उसे पहनकर वो किसी महफिल में शुरफा की महफिल में नहीं जा सकती, शुरफा की महफिल में उछलने कूदने वाली महफिल में तो चले जाएंगे शुरफा की महफिल, और यहाँ तक के अपने काम धंधे पे ऑफिस भी नहीं जा सकते। अगर उस रिवाज में वापस ऑफिस चले जाए तो लोग उनको देखेंगे पहले ऊपर से नीचे तक, कहेंगे भाई आपका कुछ दिमागी मालूम होता है इलाज की जरूरत है, क्या क्या निकल गया है आजकल, हाफ पैंट कहते हैं क्या कहते हैं उसको, ये घुटने के नीचे वो पैंटें आ गई हैं इतनी इतनी और वो यहाँ तक आस्तीन की, आधी आस्तीन या उससे भी कम आस्तीन की वो शर्टें बन रही हैं, वो पहन ली जाती हैं। और आज देखें कि वो आ जाते हैं धड़ल्ले से मस्जिद में, बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, टोपी का भी ये तमाम नहीं है। और ये जहनों में ये चीज़ है कि भाई नमाज हो गई, और हज़रत सल्लम ने अच्छे खासे उम्र रसीदा और बज़ाहिर देखने में समझदार लोग बगैर टोपी की नमाज पढ़ रहे, क्यों भाई? नमाज टोपी की अहमियत नहीं, क्यों अहमियत नहीं? यह हमें इसका हुक्म नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमा दिया, मा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें ले ले दे दें वो ले लो, और जिससे रोकें रुक से रुक जाओ, और क्या हुक्म चाहिए? सीधा सीधा ये देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इस तरीके से लिबास पहना है, इस तरह से नमाज पढ़ी है। बोलेगा नहीं, आज सल्लम ने टोपी साफा अमामा ये बांधा, बिलाल हुजूर के घर से बाहर भी नहीं निकले बगैर इसके, सर ढके हुए, जय जाए के नमाज जैसी बात है। बस यही अमल काफ़ी है आज सल्लम का, क्या आज सल्लम ने सर ढक के नमाज पढ़ी है? हमारे लिए तो आज सल्लम का उसवा असल चीज़ है। लिबास में देख ले, आदर्श में क्या लिबास पहना, बस वो नमूना है हमारे लिए, उसके मुकाबले में फिर कोई चीज़ नहीं। और ये जवाब नहीं कि हाँ इससे तो हो जाएगा, अदा हो जाएगी, भाई वो अदा होना ही क्या अदा होना हुआ जो अच्छे तरीके से नहीं हुआ। बच्चा पास हो जाता है इम्तहान में, नंबर ले लेता है पासिंग मार्क, 33 नंबर ले लिए पास हो गया, लेकिन घर वाले क्या कहते हैं, ये तो काम नहीं हुआ कि तुमने सारा साल, तुम्हारे पर हमने पैसे लगाए, पढ़ाया लिखाया, ट्यूशन भी पढ़ाई, स्कूल भेजा, इतनी मेहनत की और ये नंबर लाया हो। भाई को फर्स्ट डिवीजन लाते, सेकंड लाते तो एक बात की, तो देखिए क्या साबित हुआ कि वो होना भी कुछ होना हुआ जो इस दर्जे का हुआ। तो इसी तरीके से इबादत भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मस्जिद जा रहे, घर से निकले, उठे, घर से निकले, मस्जिद तक पहुँचे, वहाँ वक्त लगाया, नमाज पढ़ी, और इस तरह से लिबास में वो इस तरह से नमाज पढ़ के चले आए, तो बतलाई कि ये होना भी कुछ होना हुआ। देखो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कितने प्यारे नबी थे, कितना जिक्र है कुरान मजीद में, तो इनके मुकाबले में 70 जादूगर आए थे, 70, और वो इन्हीं के हुलिये में आए थे, इन्हीं का जैसा जुब्बा, इन्हीं के जैसा साफा और इन्हीं की जैसी लाठी, इनके हुलिये बना के आए थे, और आए थे महज मजाक के लिए, कोई वो नियत नहीं थी, मजाक उड़ाने की नियत से आए थे। लेकिन जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की मुआजा देखा तो मान लिया, मैंने कहा नहीं ये इनके पास जादू नहीं है। उन्होंने अपने फिर लाठियाँ डाली, वो सारे सांप और अजनबी बन गए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम अपनी लाठी डालो, वो इतना बड़ा अजनबी बन गया कि उसने सबको ऐसे खींच के निकल दिया, ऐसे खींचा वो सब उस पेट के अंदर, सब खत्म, साफ हो गया। मैं अजनबी होते हैं ऐसे जो सिर्फ खींच के अपने शिकार को निकल जाते हैं। वायस वाले ने सुनाया कि बांग्लादेश में सुंदर बिन का जंगल है जो मशहूर है, तो एक दफ़ा वहाँ कुछ साथी गए तो वो एक दरख्त गिरा हुआ था, वो 3 फीट का टाया उसका, 3 फीट ऊपर का लंबा था, वो सब बैठ गए उसके ऊपर और बैठ करके चाय वाय पीना शुरू कर दिया। मेरे तो अचानक उसमें जुम्बिश हुई, तो परेशान के ये दरख्त हिल क्यों रहा है, तो मालूम हुआ कि वो दरख्त नहीं था, वो अजदा था, साकेत पड़ा हुआ था और उस पर इतनी मट्टी वट्टी पड़ गई थी, उसकी शक्ल ऐसी बन गई थी कि देखने में वो दरख्त मालूम पड़ता था। फरमाया कि उसकी उसी की खासियत उस रहेगी कि वो सामने बकरा होता या कोई ऐसी चीज और ऐसे मुंह खोल के सांस लेता था, इतनी तेज सांस होती थी उसकी कि वो शिकार पेट के अंदर कोई भी चीज सामने आ जाए। तो ऐसे ही समझिए कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की असा में कि अज़दा में वो सिफत दी कि उसने ऐसे खींचा और सब बदल, तो वो समझ गए कि ये जादू नहीं है हमारा, तो हम तो जादूगर थे और हमारा तो जादू था ही, इन्होंने जो किया ये जादू नहीं है, तो ईमान लिया है उससे पहले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये पूछा कि या अल्लाह, तो क्यों फरमाते थे क्या, या अल्लाह आपने इन लोगों को हिदायत दे दी जो मेरे नकल करके आए थे और मुझे मेरी तस्दीक के लिए आए थे इस लिबास में, इस हलिये में, तो क्या जवाब मिला? फरमाया है मूसा वो तुम्हारी शक्ल में आए थे तो मुझे उन पर प्यार क्यों नहीं आता, वो तुम्हारी शक्ल में आए थे मुझे उन पर प्यार क्यों नहीं आता। बस ये उनको शक्ल बनाने की वजह से, नबी की शबाहत अख्तियार करने की वजह से अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, देखिए कुफर से इस्लाम, दीन अपना मकबूल, मन तशब्बा बिल्कौम फौरन, जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा उनमें शुमार हो जाए, उनमें उठाया जाए, छोटी बात नहीं है ये जी, छोटी बात नहीं है। तो चाहे अकायद हो, इबादात हो, मामलात हो, माशरत, हर चीज में आज सत्संग के जितने करीब होंगे उतना कबूलियत होगी। हज़रत मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सरहिंदी, जिन्हें हज़ार साल मुजद्दिद भी कहा जाता है, हज़रत ने फरमाया कि हमने बहुत गौर फौज की, बहुत फिक्र की कि अल्लाह ताला तक पहुंचने के क्या क्या तरीके, बंदा अल्लाह तक कैसे पहुंच सकता है, अल्लाह की ज़ात तो लामहदूद है, और ये फ़कीर फ़कीर मस्कीन और जिसके पास कोई ताकत नहीं कोई कुव्वत नहीं, गंदगी का पोटला, तो फरमाया कि हमने बस एक चीज़ नज़र आई, एक चीज़, और वो है सुन्नत की इत्तिबा, एक चीज़। ये सबसे आसान सबसे करीब रास्ता ये सुन्नत को पाया हमने, बस नबी अलैहिस्सलाम की नकल कर लो, उनकी इत्तिबा कर लो, ये आसान तरीन है और करीब तरीन, फरमाया करीब तरीन भी है, इस बात कहते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट रास्ता है ये सुन्नत, हर चीज में जाहिर सर से लेके पैर तक वैसा हो जाए और फिर अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात, माशरत, उसमें उसको देखता जाए और उसकी जो है करता जाए, तस्वीर करता जाए, दुरुस्तगी करता जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ गैरों की तरफ से आ गई हैं और हमारी ज़िंदगी का एक जुज़ बन गई, उल्टे हाथ से खाना पीना, देखिए उल्टे हाथ से कप पकड़ के चाय पी रहे हैं, उल्टे हाथ से वो ऐसी चीज़ खाने को मैंने देखा और मुझे इस कदर घिन आई, है मेरे साथ बैठ के साथ खाना खा रहे थे, लमा फरमाए कि उल्टे हाथ से खाने को हाथ लगाया उन्होंने, मैं हैरान रह गया कि ये उल्टे हाथ से खाने को कैसे हाथ लगा रही है। एक तबई यानी आदमी की नफासत भी कोई चीज़ है, अगर सुन्नत का इस्तेमाल ना भी हो तो भी आदमी उल्टे हाथ से खाने को हाथ लगाना, उल्टे हाथ से खाने को हाथ लगाना, तो वो क्या हिस खत्म हो गई, इसलिए कि उल्टे हाथ से खाने पीने को फैशन समझ लिया गया और तकारीब में खुसूसन ऑफिसों में ये इसको एक समझते हैं स्टेटस शो करने के लिए, साहब अफसर है हमारे, साहब हमारे उल्टे हाथ से, उनका एक मुकाम है, नाउज़ुबिल्लाह। اللہ کی رحمت کیا آئے گی؟ صحیح حضرت وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے رحمت آئے گی کہ غضب آئے گا؟ اور جو ہے خیر سے نماز بھی ادا کر رہے ہیں. یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہمارے گھروں میں رواج ہے ٹیبل کرسی پہ کھانے کا, اب تو یہ بہت عام ہو گیا اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, عذر معذوری ایک الگ چیز ہے. بہت بہت اس وقت گھٹنوں کے امراض کافی ہیں, نیچے بیٹھنے میں بعضوں کو دشواری ہوتی ہے, وہ ایک عذر ایک الگ چیز ہے. اس میں اگر آدمی بیٹھ جائے تو اجازت مل جائے گی, لیکن بلا عذر کے ویسے ہی عادت بنا لینا یہ کیا کہاں سے آئے؟ آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ بھی ٹیبل کرسی پہ نہیں کھایا. بھائی ہم تو امتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. کامیابی ملے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملے گی, شفاعت ملے گی تو حضور کی اتباع سے ملے گی. آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضری ہوگی قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے وہ یہ میرا امتی ہے؟ جب سنت کی اتباع کرے گا, اور قبر میں جب شبی دکھائی جائے گی, تیسرا سوال تمہارے نبی کون, یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی دکھا جاتی ہے کہ ان کو پہچانتے ہو؟ تو ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کو گھبراہٹ ہو گئی رات میں, خبر یاد آ گئی. خبر یاد آئی تو گھبراہٹ سے نیند اڑ گئی. فوراً جو اس کے نو رتن تھے ان میں سے کسی کو بلایا گیا کہ بھائی بادشاہ کا دل بہلاؤ. تو وہ جو ہندو تھا وہ پکڑا گیا اس وقت رات کو. ہندو کو جو کیا نام تھا اس کا, فیضی, فیضی نام تھا کل میں. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بادشاہ سلامت کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, چلو دل بہلاؤ. یہ اس کا دل بہلانے کے لیے تھے ہی. حضرت حضور کیا مسئلہ ہوگا؟ کہ بھائی مجھے خبر یاد آ رہی ہے, پٹی کے نیچے جانا ہوگا, اکیلے تنے تنہا اتنے سے اس میں میرا کیا ہوگا؟ دیکھیے تھا تو ہندو لیکن کیا بات کی. کہنے لگا رہے بادشاہ سلامت آپ تو مسلمان ہیں, آپ کو تو گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اوپر تو آپ کے نبی نے جو کتاب لائے ہیں, آپ کے نبی اوپر تو وہ کتاب ہے اور نیچے وہ خود موجود ہے. زمین کے نیچے کہہ رہے زمین کے نیچے تو آپ کے نبی خود موجود ہیں, پھر آپ کو گھبرا نہیں کیا ضرور. واہ ایسی بات کی اس نے کہ بادشاہ نے وہ انعام و اکرام سے اس کو نوازا اور اس کی ساری گھبراہٹ. تو یہ تیسرا سوال ہے. پہلا من ربوں کا تمہارا جو ہے دین کیا, دوسرا ماں دینوں کا تمہارا دین کیا, اور تیسرا تمہارے رسم کی دو چیزیں آتی ہیں کہ یا تو شبی دکھائی جاتی ہے یا پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے نبی کون ہے. فرمایا کہ جب ہی پہچانے گا کہ جب سنت کا اتباع ہوگا, ہر چیز میں سنت کو فوقیت دے گا. نہیں بھائی میں تو ابھی نبی اسلام کے طریقے سے خلاف نہیں کروں گا, مالے میں اپنے نبی کے طریقہ چھوڑ دوں. میں جن کا امتی ہوں اور جن کی شفاعت مجھے لینی ہے میں ان کا طریقہ چھوڑ کے دوسروں کا طریقہ اختیار کر لوں. غالباً یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا, کہ جو روم کے دربار میں جب پہنچے وہاں پر تو اسے ضیافت کی, ان کی کھانا کھا رہے تھے, ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا نیچے ٹوٹ کر کے دسخان پہ. تو انہوں نے اٹھایا کھا لیا, دیکھا صاف ہے صاف کھا لیا. تو برابر میں جو صحابی تھے انہوں نے ٹوکا دیا اور فرمایا کہ حضرت یہ برا سمجھتے ہیں, اس طرح کا فیل ان کی اچھا نہیں ہے, آپ شاہی دربار میں بیٹھے ہوئے ان کا اچھا فیل نہیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ, تو انہوں نے تو آہستہ سے ٹوکا دیا تھا, ہے نا. انہوں نے بلند آواز میں فرمایا, تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کیا میں ان احمقوں کی خاطر اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ ایسے ہی فرمایا، کیا میں ان احمقوں کی خاطر اپنے نبی علیہ السلام کی سنت چھوڑ دوں، نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دوں؟ دیکھیے یہ عظمت رسول علیہ السلام کے طریقے کی عظمت کیسی تھی ان کے دلوں میں، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے، ان کی رضا ان کی نگاہ میں میری قدر و منزلت ہے، کچھ بھی نہیں، مجھے نہیں چاہیے ان کے قلب میں اپنی قدر و منزلت، مجھے تو اللہ کی نظر میں قدر و منزلت چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قدر و منزلت چاہیے، چاہے یہ ناراض ہوتے رہے، چاہے یہ مجھے حقیر سمجھتے رہے، کچھ بھی سمجھتے رہے۔ ابھی جمعے میں ہمارے یہاں دفتر قریب مسجد ہے، تو وہاں ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب جو آتے ہیں مدار الفرنگی سے، انہوں نے اخلاص پہ ایک واقعہ سنایا، بڑا قیمتی اور بہت ہی پر اثر، کسی بزرگ کا سنا رہے تھے کہ وہ بادشاہ بادشاہ نے کوئی جو ہے چندہ جمع کیا کسی کام کے لیے، کچھ بڑا کام تھا اس کے لیے شہریوں سے، تو ان صاحب نے 200,000 درہم کے قریب بادشاہ کو دیے لے جائے کہ یہ جو ہے میری طرف سے آپ کو، فرمایا اس نئے کام میں۔ تو بادشاہ نے پھر جب دربار لگا اور مجمع آیا تو اور لوگوں سے جمع وہاں پہ اظہار کر دیا کہ ابھی اور ضرورت ہے اور فلاں صاحب نے 200,000 دیے درہم۔ تو یہ تو پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا کام کیا ہے، اور یہ تو مجھے شہرت تھوڑی چاہیے اس سے لوگوں کی نگاہ میں۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کے کہنے لگے بادشاہ سلامت وہ مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، میں نے اس کام کے لیے اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کیا، لہذا میں جو بات میں نے آپ سے کی تھی تو وہ میں واپس لیتا ہوں اور میری رقم آپ مجھے واپس کر دیں۔ اب دیکھیے مجمع، سارا مجمع لگا ہوا ہے، کتنے لوگ ہوں گے، اور اس طرح سے وہ اپنا چندہ واپس مانگ رہے ہیں، تو اب لوگوں نے ملامت شروع کر دی۔ آدمی پہلے نہیں سوچا، اس نے اب چندہ دے کر کے ہی مانگ رہا ہے واپس وغیرہ وغیرہ، جس منہ میں جتنی باتیں ہیں وہ کی، اور نے خوشی خوشی اس کو جو ہے برداشت کی اور وہ پیسے لیے اور چلتے بولے۔ اس کے بعد رات میں آئے پھر بادشاہ کی طرف، اکیلے تنہا بادشاہ تنہائی میں گئے، کہا دیکھیے حضور یہ پیسے میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، اور میں نے اس میں شہرت کی آمیزش محسوس کرتے ہوئے اس وقت میں نے یہ معاملہ کیا، لیکن یہ پیسے میں نے دے دیے ہیں اور آپ قبول فرما لیجئے، اور اللہ کے لیے اس کا اظہار آپ کسی سے نہ کریں۔ تو لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی نگاہ میں قبولیت کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ چاہے لوگ برا بھلا کہیں گے میں ان کی نظر میں گر جاؤں گا، مجھے لوگ کیا کہیں گے، کیا دیں گے۔ یہ ہے رسپانس کر رہا ہوں کہ آدھا سسم کے طریقوں کی اسی طریقے سے جب قدر و منزلت ہوتی ہے تو پھر آدمی کیسے ہی ماحول میں چلا جائے، کیسے معاشرے میں چلا جائے، وہاں اس طریقوں کو نہیں چھوڑتا، اور چھوڑنا تو دور کی بات ہے، وہ سامنے والوں کو پھر کیا کرتا ہے، ترس کھاتا ہے، یہ بیچارے انہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنے عظیم نبی کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے، ان کی جو ہے امت پیدا فرمایا ہے، ان کے طریقے متا فرمائے ہیں، تو میں کیوں ان کے طریقے کو اختیار کروں؟ جب یہ جذبہ ہوگا تو آدمی اپنے زندگی پر نظر ڈالے گا اور دیکھے گا کہ میں کیا کچھ کر رہا ہوں، روزمرہ کیا کچھ کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، اور خدا نہ خاصہ میں اس وعید میں تو شامل نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ ایک فضیلت کی چیز بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ना करने पर वही भी तो आ रही है, मन तशा कौमिन कौमिन ये वही भी तो आ रही है, जो जिस कौम की मुशावत अख्तियार करेगा उन्हीं में से होगा, लिहाजा उन तरीकों को छोड़ना भी तो जरूरी है, तो छोड़ना भी जरूरी और अख्तियार करने पर अजर सवाब और कुर्ब इलाही का वारिस बनकर, इसलिए कि इससे बड़ा कुर्ब और क्या होगा, क्या कि अल्लाह ताला वो फरमा रहे हैं कि ऐ नबी अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिए, कुल आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे क्या करे, मोहब्बत करें, क्या करना पड़ेगा, फत्तबिउनी, बस मेरी इत्तबा करो, इसकी आदत सुनो, अल्लाह ने तो ये मयार इरशाद फरमा दिए, क्या होगा, अल्लाह ताला युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे, और महबूब बना लेंगे, इसलिए अकाबिर जिन्हें ताल्लुक सच्चा ताल्लुक हुआ वो ढूंढ ढूंढ कर सुन्नत से क्या है, सुन्नत क्या है, सुन्नत क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक रात तक और जिंदगी के सारे अदवार में इस मौके पे क्या सुन्नत है, इस मौके पे क्या सुन्नत है, इस मौके पे क्या सुन्नत है, कामिल इत्तेबा। बाद बुजुर्गों ने हमारे कच्चर की सवारी की है सुन्नत की नियत, कच्चर की सवारी की, ऊंट की सवारी की है सुन्नत की नियत, घोड़े की सवारी की है सुन्नत की नियत। हमारे हजरत वाले ने एक बयान में फरमाया कि भाई चले जाओ क्लिफ्टन, वहां ऊंट वाले आते हैं, बैठो ऊंट पे, इसलिए कि शहरों में तो नहीं है ना दस्तियाबी, सुन्नत की नियत, घोड़े में बैठ जाओ सुन्नत की नियत से, और तो और खच्चर पे बाजे कब बैठे कि आदर सुन ने खच्चर की सवारी की है, शहरों में तो ये नहीं है ना चीज, वो चले गए किसी ऐसे इलाके में जहाँ खच्चर थे, सवारी कर ली सुन्नत की नियत से। बाजे अकाबिर ने इस सुन्नत को अदा करने के लिए, देखिए कि आदर सलम ने अपने महबूब बीवी हजरत उम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ दौड़ लगाई, दो दफ़ा दौड़े, छोटी उम्र की थी ना तो उनके साथ वैसा ही बर्ताव, एक दफ़ा दौड़े पहले तो हज़रत सल्लम आगे निकल, उसके थोड़े अरसे के बाद दौड़े, फिर दौड़ लगाई, चलो रेस लगाते हैं हम दोनों, देखिए क्या शांति, ये जन्नत और दोजख की, जन्नत की ज़ियारत किए हुए, दोजख के अहवाल देखे हुए, जिनके सामने अल्लाह ताला की ऐसी मारफत है, लेकिन मामलात मखलूक के साथ कैसा फरमा रहे हैं, खुशखल्की और ऐसे मामलात के जिसमें खुशकी नहीं, वो दूसरा आम आदमी अगर होता तो वो तो होशवास खो के बैठ जाता, जन्नत के हालात देख करके और दोजख की अजाबात को देखने के बाद बचता उसके अंदर, वो तो सारे काम काज छोड़ कर बिल्कुल निकम्मा होकर बैठ जाता, होशवाजी को बैठता, ये यही आदत का मुकाम है नबूवत, ये सब कुछ देखने के बाद भी लोगों के साथ कंधा पिछाड़ी से मिल रहे हैं, जिहाद भी फरमा रहे हैं, अपने अजवाज के साथ मिल भी रहे हैं, उनसे खुशकुल्की से बात भी कर रहे हैं, सब कुछ, ये है आदत का मुकाम। तो दोबारा रेस लगाई, और जब दोबारा रेस लगाई तो उस वक्त जो है पहली दफ़ा आप कीजिए, पहली दफ़ा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जीत गई, वो उस वक्त शरीरी सी थी और छोटी उम्र की, बाद में राज जिसे भारी हो गया था तो आदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए और फरमाया कि आयशा ये उस हार का बदला होगी, उस दफा की हार का बदला होगी। देखिए ये अमल था ना हसन का, हमारे बाद अकाबिर ने, सारे वाकयात तो सामने नहीं आते लेकिन कोई कोई वाकया सामने आ जाता है कि इस सुन्नत को भी अदा किया है, सुन्नत की नियत से कि अपनी बीवी के साथ दौड़ लगाइए, मैं सुन्नत की नियत से कि भाई ये भी सुन्नत है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है, ये सुन्नत अदा हो जाए। तो आशिक जो सच्चे आशिक हैं अल्लाह ताला अल्लाह की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो ऐसी सुन्नतों पर नजर रखते हों तो दीगर सुन्नतों का क्या हाल हो। राजा मशहूर है वाकया कि एक बुजुर्ग के पास एक खरबूजा लाए गए तो उन्होंने बहुत गौर किया कि इसको मैं किस तरह काटूं, सुन्नत तरीका क्या है इसको काटने का, समझ में नहीं आया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैसे काटा होगा, खरबूजा खाया होगा तो कैसे, इससे पूछा लोगों को नहीं मालूम, फरमाया भाई मैं तो ये मुझे तो आता ही नहीं है तरीका सुन्नत, लिहाजा मैं ही नहीं खाऊंगा। उन्होंने वो नोश नहीं फरमाया, मैं इसलिए कि काटना ही नहीं आता और मैं खिलाफ सुन्नत करना नहीं चाहता। इमाम रब्बानी हजरत मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही कुतुबुल आलम, जिनसे हजरत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बैत होना चाहते थे, इनसे बैत होना चाहते थे, इतने बड़े आलिम थे और ये थे हजरत हाजी साहब के से बैत। लेकिन बाद में हजरत हाजी साहब ने हाजी अमदादुल्लाह माजी मुफ्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें खुद ही बैत फरमा दी, उनको खत लिखा था हजरत ने कि हजरत वो आप सिफारिश फरमा दीजिए कि मुफ्ती साहब मुझे बैत कर ले। तो वहाँ से जवाब आया कि भाई हमने कहा कि हम ही क्यों ना आपको बैत कर लें, लिहाजा हमने आपको बैत कर लिया। देखिए यहाँ से ही पता चलता है कि बाज़ औक़ात शेख किसी को मोहब्बत से अगर खुद बैत कर ले हालांकि भी उसको उनकी मंशा नहीं थी तो बैत कर सकता है, बाद में इतला कर दी तो इस तरह से बैत हो गए। तो खैर तो दो हदीसें आई सामने कि मस्जिद से निकलते हुए उल्टा पैर निकालना है सुन्नत है, और दूसरी सुन्नत है जूती पहनते हुए चप्पल पहनते हुए सीधा पैर पहले डालना है। अब सवाल ये हुआ कि भाई ये दोनों सुन्नतें कैसे जमा होंगी, कि उल्टा पैर निकाल के, उल्टा पैर निकाला तो एक ही सुन्नत अदा हुई, उल्टा पैर निकाला जूते में डाल लिया और फिर सीधा पैर, तो वो दूसरी जो सुन्नत थी कि सीधे उसमें पहले डालना है पैर तो वो रह गई, और अगर सीधे पैर वाली सुन्नत पहले अदा करते हैं तो ये दूसरी सुन्नत रह जाती है कि पहले उल्टा पैर बाहर निकालो। मस्जिद में दाखिल होने का तरीका क्या है, मसनू तरीका सीधा पैर दाखिल करना है, दुआ पढ़नी है लमफ्ताह लिया बाब रहमतिक, सीधा पैर डाल और नियत कर ले कि मैं एहतिकाफ की नियत करता हूँ जब तक मस्जिद में हूँ। तो कहा कि भाई देखो हजरत मुफ्ती साहब क्या करते हैं, उन्होंने कहा भाई हजरत मुफ्ती साहब का क्या अमल है, लोग ताक में लग गए। जब हजरत मस्जिद से निकले तो उन्होंने उल्टा पैर निकाल कर मस्जिद से क्या किया कि पहले जूते के ऊपर रख लिया, तो जूता पहना नहीं, सीधा पैर फिर निकाला और जूता पहन लिया, उसके बाद फिर उल्टा पैर फिर दाखिल कर लिया। दोनों सुन्नतें जमा हो गई। अब बाज लोग सुनते हैं जब इस तरह की बातें, कहते बस ये मुल्ला ने इसी में है, बस मस्जिद से सीधा पैर निकालो उल्टा पैर करो बस ये इसी में है, इनकी दौड़ मस्जिद तक ही है। लेकिन ये तो मिसाल अर्ज की जा रही है, ये तो एक चीज हुई, ऐसे जिसको इसका एहतमाम होगा उसको दीगर चीजों का भी एहतमाम होगा। ठीक है, मस्जिद के हद तक नहीं है कि मस्जिद के हद तक तो ये करो और बाकी अमल गड़बड़ करते रहो, दाढ़ी रखने में तो सुन्नत करो लेकिन दीगर मामलात बद से बदतर करो। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद उस्मानी साहब ने एक जगह मैंने पढ़ा हजरत का बयान, उन्होंने फरमाया कि लोग दाढ़ी बाजे हैं, दाढ़ी तो रखते हैं वो, लेकिन और दीगर सारे मामला उल्टे बहुत खतरनाक। उन्होंने फरमाया कि फिर ऐसी दाढ़ी किस काम की, या ये दाढ़ी क्या काम देगी, इस तरह फरमाया। ये मकसद नहीं है, बाजे लोग दाढ़ी से कहते हैं कि हम दाढ़ी नहीं रखते इसलिए कि दाढ़ी वाले बड़े गड़बड़ करते हैं, ये भी शैतान का धोखा है भाई, वो गड़बड़ करते हैं आप ना करो, आपको किसने कहा गड़बड़ करने के लिए। दाढ़ी रखना तो वाजिब है, वो रख कर 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 रहा है तो वो अपने अमल का जिम्मेदार है, ये तो जवाब काम नहीं आएगा ना जी, हम तो इसलिए रखते हैं कि वो ज्यादातर ऐसे करते हैं, लोग उनको बुरा समझते हैं। वही बात आ गई, लोग बुरा समझते हैं, लोग तो बहुत चीजों को बुरा समझते हैं, कौन अच्छा समझता है दीन की बातों को। अगर लोगों ही को देखने में लग गए तो फिर तो हो चला अमल। या तो मजदूर ने दाढ़ी रखी, LLB अलीगढ़ के थे, डिप्टी कलेक्टर थे अंग्रेज के जमाने में, दाढ़ी रखी, हजरत को लिखा हजरत दाढ़ी रख लिए, लोग हंस रहे देखकर, फरमाया कि फिक्र ना करो, क़यामत के दिन तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। यहां उन्हें हंसने दो, हंसे वालों क़यामत के दिन रोना नहीं पड़ेगा। और ये शेर जो मेरे शेख का शेर है हजरत इस पे जो शेर का कि हंसने वालों यूं हंसस के मुझे मत देखो, जब कोई हंसे ना आप किसी सुन्नत के ऊपर, हम किसी दीन पर अमल कर रहे हैं, दीन की इस चीज़ पर अमल कर रहे हैं, लोग हंसे, अरे कसम अल्लाह देखो यहाँ ऐसी बड़ी तकरीब है और ऐसा जो है ये 5-star में लोग जमाए वगैरह वगैरह, 5-star क्लब्स तो मैंने वैसे कह दिया, गैर बिला ज़रूरत जाना जायज़ नहीं है, क्योंकि गुनाह ही का माहौल, गुनाह का ही माहौल है। कहीं भी किसी मौके पे भी हमारे दीन पर चलने की वजह से अगर लोग हंस रहे हैं या हमें निकम्मा समझ रहे हैं तो ये शेर पढ़ो, क्या हंसने वालों यूं हंस के मुझे ना देखो, मोहब्बत कहीं तुम्हें मुझसा ना बना दे, मुझे जो बनाया है ये मोहब्बत ने बनाया, इसने बनाया मोहब्बत ने तो बनाया मुझे, अल्लाह का शुक्र है मेरे दिल में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उनकी अजमत है, तो मैं भी ऐसा हो गया हूँ, ये तो मैं भी तुम्हारी तरह अपडेट था, और मैं भी चाहूँ तो हो सकता हूँ तुम्हारी तरह, जिसको तुम लोग अपडेट कहते हो, मैं चाहूँ तो हो सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लिहाजा मैं नहीं हूँगा। तो बस ये मोहब्बत ही तो है जिसने मुझे ऐसा बनाया है, तुम्हारे दिल में भी अगर मोहब्बत आ गई तो तुम भी ऐसे हो जाओगे। हंसने वालों यूं हंस के मुझे मत देखो, मोहब्बत कहीं तुम्हें मुझसा ना बना, हर मौके पे आदमी ये शेर पढ़े। अल्लाह का शुक्र है हमारे बुजुर्गों की जो है दुआएं, उनकी तवज्जोहात, उनकी नजरें, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ एक वाक़ पेश आया कि हमने अपनी फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा काम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, मतलब अब वहाँ पर हमारे इदारे के जो सबसे बड़े से बड़े थे वो ही तशरीफ लाए, वो कमी कमाते हैं वो भी आए, वो थोड़ा अब एक माशे में एक राय दे एक चीज़ तस्वीर के फोटो सेशन तशहर हो, ज़ाहिर बुनियादी आदमी ये बंदा ही था, तो जो हमारे इदारे के बड़े थे वो कुछ मेरे मिजाज को समझते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा भाई खाली साहब आइए, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बुज़ुर्गों का फैज़ है, उनकी ये उनकी तरफ से ये जो है समझिए ताकत मिली कि मैंने साफ फर्ज किया सर मैं तस्वीर नहीं खिंचाता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अलग रहा। अब जो जो असल करने वाला आदमी है सोचें कि वही तस्वीर में नहीं है और बाकी लोग तस्वीर में आए, लेकिन हमने अल्लाह के लिए किया, अल्लाह को मालूम है یہ طاقت اللہ والوں سے ملتی ہے. جہاں آدمی مغلوب ہونے لگتا ہے معاشرے کے دباؤ سے, ایسی جگہوں پر الحمدللہ اللہ والوں کا فیض ملتا ہے اور آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے. گناہ تھا نا تصویر کشی, الحمدللہ اللہ نے بتایا تو بات ہوئی ہے کہ ہنسنے والوں یوں ہنس ہنس کے مجھے مت دیکھو, محبت کہیں تمہیں مجھ سے نہ بنا دے, اس کا استعذار کر لیں اور کسی کی پرواہ نہ کریں سنت کے مقابلے میں. بعض مچھوں مچھے مچھ رکھتے ہیں نا اس کے وہ بڑے عاشق ہوتے ہیں. تو ایک صاحب ایسی آئے تھے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, حضرت کی تو عجیب شان تھی. ایک حضرت فرماتے تھے بھائی اس کو ختم کرو, فوراً جا کے آدمی کٹا لیتا تھا. میرے سامنے ایک صاحب آئے, ان کی داڑھی اتنی لمبی پیٹ سے بھی نیچے نکلی ہوئی, اور اچھے ہمارے علماء میں سے. حضرت کے پاس آئے سمجھائے کہ دیکھو ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے باجی, ایک مٹھی مسنون ہے. فوراً باہر آئے اور وہاں ہمارے خدام حضرت کے سب تیار رہتے, کینچی افطرا وسطرا سب ریڈی, آپریشن تھیٹر بالکل تیار. وہیں انہوں نے اس کا اضافی صاف کیا اور حضرت کے سامنے پیش کر دیا. ابھی شکل کوئی تھی, ابھی شکل کو وہ تاثیر تھی اس میں حضرت کی باتوں میں. ایک وزیر حاضر, وزیر سروس حاضر سروس کے تب شلوار ٹکنے سے نیچے, وہیں حضرت نے فرمایا یہ خلاف سنت ہے شلوار اوپر تھے, کھڑے کھڑے وہیں اونچا کرا دیا. باہر آ کے کہنے لگا ہم تو بہت بزرگوں کے پاس گئے, ایسا بزرگ نہیں کہا جو ذرا بھی محروم نہیں ہوتا کسی سے, جس کے دل میں وہ خالق کائنات ہو سچا تعلق والا, تو وہ کیا ان چیزوں سے. اور ایک آیا مچھ, بڑے بڑے مچھے, ہمارے سندھ کے لوگوں میں بڑا اس کا رواج ہے, جاگیردار اس ٹائپ کے تھے. ارے بھائی بھائی یہ تو من تب والا شاعری بہاؤ لم جل شفاتی, اس کی مچھیں بڑی ہوں گی اس کو شفاعت نہیں ملے گی. اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی, گیا اور وہیں ہمارے جو آپریشن تھیٹر تھا خادمین کا جا کے ساتھ. بعد میں سنا کہ جو اس کے ساتھی تھے جب وہ باہر نکل کے ساتھیوں کے پاس گیا, وہ تو بڑے حیران پریشان کہ یہ کیا کر دیا ہمارے وڈیرے, کیونکہ ان کے یہاں تو کہا جاتا تھا کہ مچھ نہیں تھے کچھ نہیں, ان کے یہاں مقولہ ہے مچھ نہیں تھے کچھ نہیں, سب کچھ وہ مچھ میں سمجھتے, ساری مردانگی ساری جاگیرداری سارا وڈیرا پن. حضرت کے سامنے اس کو دہرا دیا تو فرمایا کچھ نہیں تھے کچھ نہیں, حضرت فرمایا سنت نہیں تو کچھ نہیں, غلط ہے کچھ نہیں تھے کچھ نہیں غلط, سنت نہیں تو کچھ نہیں. اور ایک مرتبہ حضرت بھاول نگر میں جلسے میں وہاں بیان تھا, تو وہاں پر خواتین کا پنڈال اور جو ہے مردوں کا پنڈال, تو وہاں کی خواتین نے یہ کیا رواج تھا, یہ پیر کو ضرور دیکھتے تھے, ان کے تو پردے وردہ تو کراتے نہیں نا وہ لوگ. اللہ معاف فرمائے کہتے ہیں ارے جب تجھے دیکھیں گے نہیں تو تیری شفاعت کیسے کریں گے. چاہے بازے جو ہیں اس طرح دیکھتے ہیں اور مریدیوں کہتے ہیں جب تجھے پہچانیں گے دنیا میں تو وہاں پہچانیں گے نا, تو ہم سے چھپتی ہے. اللہ معاف فرمائے, تو یہ ان کا رواج ہے. وہاں عورتوں نے کہا کہ جو ہے وہ بڑا پنجابی میں کیا جملہ مسا تھا کہ ہم پیر کو دیکھیں گے, پیر کو ضرور دیکھیں گے. تو حضرت نے ڈانٹ کے فرمایا کوئی بے پردگی نہیں ہوگی یہاں, اور کوئی پیر کو نہیں دیکھے گا, اور اگر دیکھنے کی کوشش کی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں حضرت کی گفتگو کا, اور بالکل پردہ ٹائٹ کر دیا, کسی کو دیکھنے کی اجازت. تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی, وہ ان چیزوں میں پھر نہیں آتا. اور یہی ہے سرمایہ, اور یہی ہے دولت. हमें अपनी जिंदगी के हर सांचे हर गोशे पे जो है ये नजर डालनी है। अल्लाह हमें तौफीक दे हर चीज में। खाने पे हम नजर डालें अपने आदर्शों के दस्तरखान पे सिरका मौजूद होता था और सिरके के फवायद बयान फरमाए और फरमाया जिस दस्तरखान पे सिरका है तो उस पे सालन की कोई जरूरत नहीं है। मफहूम अर्ज करो, ये भी सुन्नत अपने दस्तरखान पे सिरके का एहतमाम, लौकी का खाने का एहतमाम। मतलब ये सिर्फ खाने खाने पे नहीं, उसे देखिए हर गोशे पे हमें नजर डालनी चाहिए, मिलने में जुलने में मामलात में बर्ताव में किरदार में सब्र बर्दाश्त में भी। हज़रत का सब्र बर्दाश्त कितना था। एक यहूदी आया, उसने हज़रत के यहाँ गिरबान से पकड़े खींचा आपको और हज़रत ने कुछ नहीं किया उसको। ये थी उनकी माफ करने की हो बर्दाश्त की। ये आज हमारा क्या ये सारे तरीके हमें आज़म के करीब करेंगे, इस पे इस्तेज़ार होना चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए और मकसूद समझ के इसको करें हम कि यही मकसूद है। खिलाफ़े पैगंबर किसे रहगज़ीब मरहूम फरमा रहे हैं कि हरगिज़ बमंज़िल न ख्वाहिद रसीब। इतने बड़े औलिया अल्लाह कि जो खिलाफ पैगंबर चलेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके खिलाफ चलेगा क्या होगा कि हरगिज़ वह मंजिल ना फाहिद रसी, कभी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेगा। इतना ही अपने आप को समझता रहे मतलब क्या क्या आप जायज होंगे आज उनके तरीके के खिलाफ नहीं पहुंच सकता मंजिल। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। واخر دعوانا الى الله